ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए समानुपाती की ओर समावेशी समूह का प्रतिशत निर्धारण। देश में शांति और स्थिरता के लिए चुनाव निर्धारित समय में ही होने चाहिए, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। दूसरे विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। योग और ध्यान को स्कूलों में अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, शिक्षा मंत्री महावीर पून द्वारा जानकारी। और दक्षिण अफ्रीका के जोहानेसबर्ग स्थित एक बार में गोली चलने से हुई 9 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव पहला संशोधन अध्यादेश 2082 के अनुसार आगामी चुनाव के लिए समानुपातिक चुनाव प्रणाली के तहत समावेशी समूहों के प्रतिशत का निर्धारण किया है। सरकार ने 2078 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर दलों को उम्मीदवारी की बंद सूची प्रस्तुत करनी होगी। समानुपातिक चुनाव प्रणाली के लिए आवेदन करने वाले राजनीतिक दलों को इसी पूछ 13 और 14 गति को सुबह 10 बजे से अपराह 4 बजे तक उम्मीदवारों की बंद सूची प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी बीच आयोग ने कल प्रधानमंत्री सुशीला कार्की सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और संबंधित पक्षों के बीच चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, कानून संशोधन आदि विषय पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। ये जानकारी आयोग ने दी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि देश में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिनिधि सभा का चुनाव निर्धारित समय में ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्की ने इलाम क्षेत्र नंबर 2 के पूर्व सांसद सुहांग नेमवांग के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सिंह दरबार में हुई मुलाकात के दौरान कहा कि ये सरकार चुनाव कराने के लिए ही आई है, इसलिए अब किसी भी दुविधा के बिना चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। आज ही प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने तमू ह्यूल छोज धी गुरुंग राष्ट्रीय परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई मुलाकात में कहा कि अपनी परंपरा और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश सभा के सभामुख पद पर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के राम आशीष यादव निर्वाचित हुए हैं। मध्य प्रदेश सभा की आज हुई बैठक में सभामुख पद के लिए हुए चुनाव में यादव 72 मत प्राप्त कर निर्वाचित हुए। बैठक में 96 प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थे, जिनमें से 24 सदस्यों ने यादव के विरोध में मतदान किया। प्रदेश सभा में रिक्त सभामुख पद के लिए जसपा नेपाल की ओर से राम आशीष यादव और नेकपा एमाले की ओर से त्रिलोकी प्रसाद ने उम्मीदवारी दाखिल की थी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि सरकार जेंडर आंदोलन के मर्म के अनुसार सुशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए काम करते हुए आगे बढ़ रही है। पदभार ग्रहण करने के 3 महीने की अवधि में मंत्रालय की उपलब्धियों को साझा करने के लिए आज बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री खरेल ने कहा कि सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश में चुनाव का माहौल सहज बनता जा रहा है। पत्रकार सम्मेलन में श्री खरेल ने आम संचार, दूरसंचार, सूचना प्रविधि, डाक सेवा, मुद्रण, चलचित्र और अन्य विभिन्न क्षेत्रों की 30 उपलब्धियों को साझा किया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने संपत्ति शुद्धिकरण की ग्रे लिस्ट से नेपाल को बाहर निकालने के लिए अब तक हुई तैयारियों के बारे में संबंधित निकायों के पदाधिकारियों से संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री कार्की ने आज अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल, अर्थ मंत्रालय के राजस्व सचिव भूपाल बराल और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर डॉ विश्व पौड़ेल की उपस्थिति में अनुसंधान निकायों की ब्रीफिंग ली। ये जानकारी प्रधानमंत्री के सचिवालय ने दी। संपत्ति शुद्धिकरण मामले में समय पर अनुसंधान एवं अभियोजन प्रक्रिया चलाने, इस अपराध से अर्जित संपत्ति पर रोक लगाने व जब्त करने लगायत में हुई प्रगतियों के संबंध में अनुसंधान निकायों के प्रमुखों ने ब्रीफिंग की थी। इस दौरान संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग ने बताया कि सिर्फ काठमांडू घाटी में ही 1600 रोपनी यानी 120 बीघा से अधिक जमीन पर रोक लगाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री महावीर पूंग ने कहा कि योग और ध्यान को विद्यालयों में अतिरिक्त क्रियाकलाप में शामिल करने का निर्देश किया गया है। दूसरे विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर मूल समारोह समिति द्वारा आज काठमांडू के टूडी खेल में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री पूंग ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि योग और ध्यान को पर्यटन प्रवर्धन से जोड़ना भी जरूरी है। मौके पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री डॉ सुधा शर्मा ने कहा कि परम्परागत चिकित्सा पद्धति के रूप में मौजूद योग, ध्यान और आयुर्वेद को सरकार की नीति तथा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कार्यरत सभी संघ संस्थाओं से सहकार्य करने का आग्रह भी किया। बता दें कि पिछले साल 7 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने हर 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि ऑनलाइन टेलीविजन तथा ऑनलाइन पत्रकारिता की व्यवसायगत सुरक्षा और संस्थागत विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज ऑनलाइन टेलीविजन पत्रकारों के साथ मंत्रालय में हुए विचार विमर्श के दौरान संचार मंत्री खरेल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नेपाल में संचालित ऑनलाइन टेलीविजन लगायत संचार माध्यमों और उनमें कार्यरत संचार कर्मियों का वास्तविक तथ्यांक तक सरकार के पास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से लोक कल्याण विज्ञापन आदि राज्य की ओर से उपलब्ध होने वाली सुविधा से ऑनलाइन संचार माध्यम वंचित है। इसलिए सरकार जल्द से जल्द ऑनलाइन टेलीविजन के पंजीकरण और सूचीकरण का काम शुरू करेगी। जेनजी आंदोलन के नेता मिराज ढुंगाना के समूह ने कहा है कि जेनजी आंदोलन की मांगों और मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने 10 सूत्रीय एजेंडा के साथ फिर से आंदोलन की घोषणा की है। समूह ने आज पत्रकार सम्मेलन कर युवाओं की भावनाओं के अनुरूप सरकार न चलने का आरोप लगाते हुए कल से शांतिपूर्ण आंदोलन करने की जानकारी दी। मौके पर जेनजी नेता ढुंगाना ने कहा कि विकृति, विसंगति और भ्रष्टाचार के अंत तथा सुशासन के पक्ष में हुए पिछले आंदोलन के मर्म और भावनाओं के अनुरूप परिणाम नहीं आया है, इसलिए हम लोग पुनः सड़क पर आने के लिए बाध्य हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अफ्रीका में एक शराब खाने में हुई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। पुलिस के मुताबिक जोहान्सबर्ग के पास वेक्सर डाल इलाके में 7 पुरुषों और 2 महिलाओं की मौत हुई है। बताया गया है कि करीब 12 अज्ञात हमलावर 2 गाड़ियों में आए और शराब खाने में मौजूद लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने कहा कि हमलावरों ने उस समय भी अंधाधुन फायरिंग जारी रखी जब लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। ये गोलीबारी रविवार को स्थानीय समय अनुसार तड़के करीब 1 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि ये शराबखाना लाइसेंस प्राप्त था। दक्षिण अफ्रीका दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां हत्या की दर बहुत ज्यादा है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच हर दिन औसतन 63 लोगों की हत्या हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए समानुपाती की ओर समावेशी समूह का प्रतिशत निर्धारण। देश में शांति और स्थिरता के लिए चुनाव निर्धारित समय में ही होने चाहिए, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। दूसरे विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। योग और ध्यान को स्कूलों में अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल किया जाएगा, शिक्षा मंत्री महावीर पूंग द्वारा जानकारी। और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग स्थित एक बार में गोली चलने से हुई 9 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।